Kalpa Radio Exclusive Interviews. अर्पा रेडियो पर आज सुनिए बिलासपुर नगर से गुजरने वाली अर्पा नदी के बारे में कुछ बातचीत। कहाँ है इस नदी का उद्गम और कहाँ है इसका संगम, इस बारे में अक्सर कुछ विवाद सामने आते हैं। आज इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए सीएमडी महाविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीएल चंद्राकर हमारे साथ हैं, कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, कुछ भौगोलिक जानकारियों के साथ। आइए करते हैं इनसे एक मुलाकात, लेकिन उससे पहले सुनते हैं छत्तीसगढ़ के राज्य गीत की दो पंक्तियाँ। अर्पा नदी, जिसके बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। सामान्य ज्ञान की किताबों में इसका उद्गम अलग अलग स्थानों में बताया गया है। इसके संगम को लेकर भी हमेशा से विवाद रहा है, लेकिन अध्ययन और तथ्यों के आधार पर सच क्या है, झूठ क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं सीएमडी कॉलेज बिलासपुर के भूगोल वेत्ता डॉक्टर पीएल चंद्राकर। इन्होंने बहुत अध्ययन किया है अर्पा नदी के बारे में, तो आज बहुत सारी बातें इनके साथ। नमस्कार डॉक्टर चंद्राकर।
नमस्कार मैम।
आप केवल सीएमडी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ऐसी बात नहीं है, आपने बहुत कुछ भूगोल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए किया है। पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी स्टडीज के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या चीज़ें छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में देखी, जानी और जिन पर सवाल भी उठाए।
सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ था और पृथक राज्य बना, तो मैं और मेरे गुरुदेव डॉक्टर के त्रिपाठी, कौशलेन त्रिपाठी, उस समय हमारे सीएमडी कॉलेज के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष थे, दोनों मिलकर के छत्तीसगढ़ एटलस नाम की एक किताब की हम रचना किए थे, जिसका विमोचन 1 नवंबर को हुआ था। एक तरह से साहित्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ का प्रथम परिचय हम दोनों प्राध्यापकों ने कराने का प्रयास किया था, जो पुस्तक काफ़ी पॉपुलर और चर्चित हुई थी। इसके पश्चात सन 2001 में हमने लोगों की आवश्यकता और विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ का भूगोल नाम की एक किताब लिखा, और वो काफ़ी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक पहलुओं को लेकर विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया। इसके पश्चात भाषागत असुविधा हुई, तो हम और त्रिपाठी साहब दोनों मिलकर के सन 2006 में उस एटलस को अंग्रेजी भाषा में लोगों के लिए प्रकाशित करवाए। फिर इसी तरह से हम भूगोल के प्राध्यापक हैं, अमरकंटक एक भारतवर्ष का प्रसिद्ध तपोभूमि और तीर्थ स्थल है, उस पर मैं और मेरी श्रीमती ने अमरकंटक वैभव हिंदी में और अंग्रेजी में ग्लोरियस अमरकंटक नाम की किताब लिखे, जो काफ़ी प्रसिद्ध है और कम से कम 7 उसका संस्करण छप चुका है। वर्तमान समय में मैंने भारत सरकार के UGC के 2 प्रोजेक्ट और CSR के 1 मेजर प्रोजेक्ट पर काम किया हूँ। मेरे अंडर में लगभग 9 शोधार्थी PhD की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। मैंने NSS में भी काम किया है, तो गांवों के ऊपर लेकर के बदली तस्वीर नाम की एक किताब लिखा। फिर मेरे पास लगभग 30-35 वर्ष का रिसर्च का अनुभव है, छत्तीसगढ़ के जो गाँव आज बदल रहे हैं उसको लेकर के मैंने हमारा गांव हमारा रिश्ता नाम का सन 2021 में किताब लिखा है। और मैंने देखा कि भूगोल में नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है और उस टेक्नोलॉजी के जो मेजरमेंट है वो बदल रहे हैं, तो आवश्यकता को महसूस करते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की पहली प्रायोगिक भूगोल नाम की किताब लिखा है, जो बीए और एमए के दोनों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है।
इतनी लंबी फेहरिस्त आपके कामों की, आपकी किताबों की, भूगोल के क्षेत्र में इतना सारा काम करने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा आपने अरपा नदी के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च की है, और वर्तमान में अरपा रिवाइवल प्लान जो तैयार किया जा रहा है उसके भी आप मेंबर हैं। आप हाई कोर्ट में भी पक्षकार के रूप में अरपा नदी के लिए जुटे हुए हैं कि लोगों को सही जानकारियां प्राप्त हों। तो क्या मिथक हैं, क्या लोगों के मन में धारणाएं हैं अरपा नदी के उद्गम और संगम को लेकर, पहले तो हमारे उन श्रोताओं को ये जानकारी दीजिए जिनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है।
बात ऐसा है कि 2-3 सालों से अरपा नदी को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में काफ़ी प्रकाशित किया जा रहा है, तो उसके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि अरपा जो नदी है उसको उद्गम को लेकर के समाज के वर्गों में मतभेद है। तो मैं एक भूगोल के प्राध्यापक होने के नाते अरपा नदी से संबंधित जितने भी साहित्य उपलब्ध हैं उन साहित्यों का अध्ययन किया। उनमें ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा आपको द ज्योग्राफी ऑफ द पुरानाज, ये बहुत पुरानी किताब है अरपा नदी पर, प्रोफेसर एस एम अली सागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखा है।
ज्योग्राफी और पुरानाज मतलब पुराण के ऊपर ज्योग्राफी की बातें हैं इस किताब में।
हाँ, मतलब पुराणों में जो ज्योग्राफी का उल्लेख किया गया है उसको प्रोफेसर अली ने यहाँ के नदी, पर्वत, प्रदेश और खनिज, इन सब बातों को भौगोलिक शैली में या भौगोलिक विधा में आम जनता के लिए विश्व स्तर पर प्रकाशित करने का प्रयास किया।
तो ये डॉक्टर अली ने ये किताब कब लिखी थी और अरपा नदी के बारे में उसमें क्या लिखा है?
हाँ, डॉक्टर अली ने सन 1966 में यह किताब लिखी थी, उसको भारत सरकार के सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रकाशित कराया है, उसको ऑनलाइन देखा जा सकता है।
अच्छा।
पौराणिक उल्लेख के अनुसार ब्रह्म पुराण, वायु पुराण में अरपा नदी को रूपा नाम से संबोधित किया जाता
था। अच्छा।
जिसको प्रोफेसर अली ने अरपा नदी के रूप में पहचान किया है और उस नदी का उद्गम मैकल पर्वत श्रेणी से बताया है।
अच्छा, अमरकंटक से भी जो पर्वत श्रृंखला है वो मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आती है।
जी, मैकल पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है अमरकंटक।
अच्छा, तो उस किताब में क्या उस रूपा नदी यानी कि आज की अरपा नदी का कुछ उद्गम स्थल के बारे में जानकारी है?
हाँ, ये कहा गया है कि ये रूपा नदी है जिसको वर्तमान समय में उन्होंने अरपा लिखा है, इसका उद्गम मैकल पर्वत श्रेणी से हुई है।
अच्छा, तो जब आज मैकल पर्वत श्रेणी से ही निकली हुई इस अरपा नदी के उद्गम की बात होती है तो किसी का कहना होता है कि वो अमरपुर पेंड्रा से निकली हुई है, कोई कहता है खोड्री खोंगसरा से निकली हुई है, इसके अलावा और भी मत हैं, तो इस बारे में कुछ बताएंगे आप?
हाँ जी, मैंने क्या है कि सरकारी दस्तावेज जो गजेटियर होता है और सेंसस बुक होता है उसका अध्ययन किया। अब रही बात कि जो भारत में भूगोल साइंटिफिक ढंग से 1945 के बाद आया, उसके पूर्व के जो अध्ययन होता था वो अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर किया जाता था। भी पिछड़ा हुआ था भारत और जंगली इलाका में इसका उद्गम तो कोई क्या है कि बताने पर लिख दिया गया, अथवा ऐसा हुआ कि पूरा एक पेंड्रा पठार से अरपा नदी निकली है सेंसस में लिखा हुआ है।
अच्छा।
गजेटियर में लिखा हुआ है कि भाई केंदा जमींदारी के उत्तरी भाग से निकली हुई है अरपा नदी, तो एक स्पेसिफिक स्थान को इन सरकारी दस्तावेजों में नहीं बताया गया है, बल्कि एक पूरा प्रदेश जैसे पेंड्रा पठार या उत्तरी केंदा जमींदारी, इसको अरपा नदी का उद्गम बताया गया, कोई आइडेंटिफाई एक निश्चित स्थान को नहीं किया गया। इसी तरह से बाद में भूगोल वेताओं ने किताब लिखा, उसमें कई छत्तीसगढ़ के भूगोल है, सारी किताब में खोंडरी खोंसरा लिख दिया गया है।
अच्छा।
तो खोंडरी खोंसरा एक बड़ा विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें से किस स्थान, कोई गांव से, कोई लेटीट्यूड, कोई लॉन्गिट्यूड से निकला है ये उल्लेख नहीं है। और आज यही प्रचलित है सारे जितने भी कोचिंग संस्थान है और किताब है कि अरपा नदी खोंडरी खोंसरा से निकली है और उसी के आधार पर इसकी लंबाई जो ज़्यादा होना चाहिए 108 किलोमीटर बताई जाती है, बहुत कम है अरपा नदी की। अगर ये लंबाई रही तो अरपा लंबाई के आधार पर जो श्रेणीकरण किया जाता है नदियों का उसमें काफ़ी पिछड़ी और बौनी हो जाएगी अरपा नदी।
अच्छा, तो मतलब ये नदी काफी लंबी है लेकिन इसको छोटा बताया जा रहा
जी,
है।
हाँ, जी हाँ।
कितनी लंबाई आपके अनुसार?
मैंने मेजरमेंट किया वर्तमान समय में सैटेलाइट की पिक्चर के आधार पर, टोपोसीट के आधार पर, अरपा नदी की जो मुख है शिवनाथ नदी में बिलहा तहसील के मटियारी गांव में मिली है।
अच्छा।
और उस मटियारी गांव से जो मुख है वहां से अरपा नदी को मैं डिजिटाइज्ड मेथड से सैटेलाइट के जो मानचित्र है उस मेजरमेंट किया, तो जो उद्गम है माइकल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक के पास एक सोता है अमरकुंड नाम का।
अच्छा।
जिसको अमरकुंड कहा जाता है, अमरेश्वर तीर्थ। ये जो कुंड है ये अमरकंटक पर्वत और राजमेरगढ़ पहाड़ी के घाटी में है।
अच्छा।
वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, आश्रम भी है, और दुर्गा धारा जो जलप्रपात, प्रसिद्ध जलप्रपात, वो भी स्थित। वहाँ तक की जो दूरी होती है 164 किलोमीटर होती है। इस आधार पर अगर हम मेजरमेंट करें तो छत्तीसगढ़ की 10वीं लंबी नदी बन जाती है।
अच्छा अच्छा। अरपा नदी छत्तीसगढ़ की 10वीं लंबी नदी है, लेकिन अरपा नदी को राज्य गीत में पहली जगह स्थान दिया गया है। अरपा पैरी के धार गीत आप सभी ने सुना है और उसका पहला अक्षर ही अरपा नदी के महत्व को बताता है, लेकिन इस महत्व को बहुत महत्वहीन कर देते हैं लोग बाग जब इसके उद्गम की बात होती है। तथ्यों के आधार पर डॉक्टर चंद्राकर हमको बता रहे हैं कि अमरकंटक और राजमेरगढ़ के बीच में एक कुंड है जहाँ से ये नदी निकलती है, लेकिन आम धारणा है कि अमरपुर पेंड्रा के पास से इसकी नदी निकलती है, तो उस संदर्भ में क्यों नकारा गया कि ये जगह नहीं है उद्गम के लिए?
हाँ, देखिए क्या है कि अमरपुर का किसी भी साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन खोंडरी और खोनसरा का भूगोल की किताबों में और कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट उनकी किताबों में उल्लेख मिलता है। खोंडरी के जो लोग हैं समाज से, वो लोग एक छोटा सा एक मलेलिया नाला है वहाँ गड्ढा किया गया है और उस गड्ढे से जो पानी निकल रहे है उसको ही अरपा बता दिए हैं,
खोडरी में।
हाँ, खोडरी में।
अच्छा।
और वहाँ लिख दिए हैं त्रिवेणी संगम अरपा नाम का। अमरपुर के लोग बोलते हैं कि एक खेत से, लेकिन खेत के आगे कोई नाला के रूप में या किसी नदी के रूप में कोई प्रवाह दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, उधर से एक पनकोटा नाम के गाँव से फुलवारी नाम की नाला आती है जो खोडरी में आ करके मलेलिया नाला में मिलती है। मलेलिया और फुलवारी का एक संगम जा करके आ करके कोटा विकासखंड के एक मोहली गांव है, टाटी धार और मोहली गांव, वहां दो जलधाराओं का संगम है। एक तो मैकल पर्वत श्रेणी जिसको मैंने अमर कुंड बताया, उधर से आने वाली जलधारा जिसको आमा नाला और माटी नाला कहा जाता है, और दूसरा पेंड्रा की ओर से आने वाली जलधारा, दोनों का मोहली और टाटी धार में संगम है। वहीं से शासकीय रिकॉर्ड में अरपा नाम का उल्लेख मिलता है।
अच्छा, तो कहीं अमरपुर और अमरकुंड इन दो नामों के कारण तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं हुआ?
हाँ, संभव हो सकता है, क्योंकि ऐसा अमरकुंड को ही अमरपुर, चूंकि पेंड्रा के पास एक गांव है, वहां पर एक छोटा सा खेत है और उस खेत में पानी इकट्ठा होता है, बरसाती पानी, तो उसको अज्ञानतावश या किन्हीं कारणों से उसी को अमरकुंड मान लिया गया होगा।
हमने जैसा पहले सुना था 1982 के आसपास की बात है जो हमारे परिचितों द्वारा देखी गई है, कि उस समय अमरपुर पेंड्रा में जो वहाँ पेंड्रा का कॉलेज है उसके बगल में खेत है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा दलदल हुआ करता था और वहाँ से लगातार पानी रिसता था जो आगे जा कर के नदी का रूप धारण करता था, और अमरपुर पेंड्रा के उस पॉइंट को ही अरपा नदी का उद्गम माना जाता था, लेकिन बाद में वो खेत हो गया, सूख गया। तो इसके क्या कोई तथ्य रिकॉर्ड्स हैं कि उस समय नाला था और अब नहीं है?
देखिए, भारत सरकार की जो सर्वे ऑफ इंडिया की 1951 का टोपोसीट है और वर्तमान समय में जो सैटेलाइट का जो मानचित्र है, उनमें कहीं पर अमरपुर गांव से अरपा नाम की नदी का उद्गम का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा जो मिसल बंदोबस्त होता है 1927-28 का, उस इलाके के कई गांवों का और खोंडरी तक के अनेक गांवों का मैंने मिसल बंदोबस्त का अवलोकन किया। इस पूरे पेंड्रा जिला, मरवाही पेंड्रा गौरेल जिला के अंदर कहीं पर भी किसी भी रिकॉर्ड में अरपा नाम की नदी का उल्लेख नहीं मिलता है।
अमरपुर में उद्गम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन ये रिकॉर्ड ज़रूर मिलते हैं कि अरपा नदी के उद्गम के लिए अलग अलग स्थानों पर 8 जगह का उल्लेख मिलता है। तो अब आपके तथ्यों के अनुसार, आपकी जानकारी के अनुसार, आपकी स्टडी के अनुसार, आप सही उद्गम स्थल और सही संगम स्थल वैज्ञानिक आधार पर किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं?
हाँ जी मैडम, क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरपा नदियों के उद्गम और संगम निर्धारण के एक स्केल और मापदंड है। उस स्केल के आधार पर एक नदी बेसिन बनाती है और उस बेसिन में जो मुख्य नदी होती है उसके मुख से उस नदी को सबसे दूरी तक के बेसिन में कहाँ तक दूरी तक के कहाँ से जल प्राप्त होता है उस स्थान को उसका उद्गम माना जाता है। इस आधार पर, इस मापदंड के आधार पर हम देखें तो अरपा नदी की जो वर्तमान समय में संगम शिवनाथ नदी में हुआ है वो बिल्हा तहसील के मटियारी गांव में हुआ है। उस मटियारी गांव से अरपा नदी का जो बेसिन का आखिरी छोर है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। उस मध्य प्रदेश की सीमा में अमरकुंड स्थित है, सबसे दूर स्थित है और उस कुंड से 12 महीना सतत रूप से जल प्रवाहित होता है। तो दो मान्यता है, एक तो नदी बेसिन में सबसे दूर उस नदी को कहाँ से जल प्राप्त होता है उस स्थान को उद्गम माना जाए, और दूसरा कि कंटिन्यूअस लगातार जल कहाँ से प्राप्त होता है उसको उद्गम माना जाए। तो दोनों ही परिस्थितियाँ अमरकुंड में हमको दिखाई पड़ती है। इसलिए तवा डबरा गांव जहाँ जालेश्वर महादेव है और राजमेरगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के सीमा में आता है, उस अमरकुंड को हमने उस वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के आधार पर उद्गम माना है और उस आधार पर अरपा नदी की लंबाई 164 किलोमीटर बैठती है।
और इसका संगम स्थल आपने कहा मटियारी गांव,
जी
ये गांव कहां पर है?
मटियारी जो गांव है उसको बिल्हा तहसील के अंतर्गत आता है और संगम को लेकर के भी जो सरकारी दस्तावेज है और जो कोचिंग संस्थानों के दस्तावेज है और भूगोल की किताबों में उसमें भी विवाद है। 4 स्थानों पर बताया गया है, कोई ठाकुर देवा कहता है, कोई बरतोरी कहता है, तो कोई और गांव का उल्लेख करता है। लेकिन वास्तव में आप गूगल के मानचित्र गूगल को सर्च करके देख लीजिए, मटियारी गाँव में ही अरपा नदी शिवनाथ में मिली है, हमने प्रत्यक्ष रूप से भी उसका अवलोकन किया है।
जी जी, अरपा नदी उद्गम से संगम तक कई यात्राएं होती हैं, हर साल तरह तरह की रिसर्च यात्रा और टूर करते हैं, तो क्या ये यात्रा इसी पथ पर होती है अब?
हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन क्योंकि जैसा कि बताया कि समाज का एक बड़ा वर्ग आज अरपा नदी को ये साबित करने के लिए लगे हुए हैं कि उसका उद्गम अमरपुर से हुआ है जो पिंडरा के पास एक गांव और एक खेत है, तो वो जो अरपा उत्सव है और अरपा के लिए जो यात्रा निकलती है वो वहीं से निकाली जाती है, बिलासपुर।
अच्छा,
से ठीक है। लेकिन रही बात यह है कि वैज्ञानिक आधार की, तो वैज्ञानिक आधार पर जो अरपा नदी का संगम है वो मटियारी गांव में है, शिवनाथ नदी में, कोई भी जाके देख सकता है अपनी आँखों से। और वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जिसके आधार पर दुनिया का एटलस बनता है, सेटेलाइट का मैप बनता है, उस मान्यता के आधार पर अगर हम चलें तो वास्तव में उसका उद्गम जो गौरेला विकास खंड है, पिंडरा गौरेला मरवाही जिला का तवा डबरा गांव में एक अमर कुंड है जहां से नेचुरल स्प्रिंग बसंत जिसको बोला जाता है और आम बोलचाल की भाषा में झरना वहां से निकली है।
अच्छा डॉक्टर चंद्राकर, जैसे आपने कहा कि आपकी स्टडीज, आपके ग्रुप से आपने रिसर्च की, लेकिन इन सब तथ्यों का कहीं पर अब मान्यता प्राप्त हो चुकी है क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर?
देखिए मैम, क्या है कि इस पर मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा, छत्तीसगढ़ के अरपा नदी के उद्गम और संगम का निर्धारण, उसको अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में मैंने छपवाया है जिसको UGC केयर लिस्ट में लिस्टेड है, और जो शोध पत्र है उसको मैंने छत्तीसगढ़ भूगोल परिषद और इंडियन ज्योग्राफर के समक्ष प्रस्तुत किया, तो सारे जो ज्योग्राफर्स हैं सीनियर और जूनियर उस सब ने उसकी सराहना किया और यूनिक रिसर्च माना है और अच्छा माना है।
अच्छा।
फील्ड बेस्ड रिसर्च माना है। तीसरा काम मैंने किया कि विभिन्न अखबारों में भी इस पर इंटरव्यू करने का कोशिश किया गया है और एक आक अखबार में छपा है, नवभारत उसमें अग्रणी स्थान में है, फिर सीजीवाल का नाम आता है। फिर चौथा काम मैंने ये किया कि सरकार के विभागों को जो संबंधित उसको पत्र लिखा है।
अच्छा।
और पांचवा काम अरपा नदी के उद्गम को लेकर के जो हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक रीट दायर है, पब्लिक रीट बोला जाता है उसको, उसमें भी मैंने
जनहित याचिका
उसमें भी मैंने अपने पक्ष को रखा है। अब भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैंने तथ्य को आने वाली पीढ़ी को एक एक्चुअल ट्रू नॉलेज मिले, पढ़ाने वाले को और पढ़ने वाले को दुविधा की स्थिति ना बना रहे, इसलिए हमारा प्रयास है। ऐसा कोई हथकंडा नहीं है कि हम समाज में विवाद करें, समाज शांति और अमन चैन के साथ रहें। अर्पा सबकी है, हमारी भी है, और हमारी अर्पा है इसलिए हमने अर्पा पर सोचने का प्रयास किया है। वो जीवन रेखा है बिलासपुर की, छत्तीसगढ़ के जो राजकीय गीत है उसमें महिमा का मंडन किया गया है, उसका वंदन किया गया है। अर्पा को प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्राकर आपका कि आपने उन तथ्यों की जानकारी दी जिनके बारे में बहुत सारे लोग आज तक अलग अलग राय पर कायम हैं।
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। बिलासपुर के सीएमडी महाविद्यालय के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर पीएल चंद्राकर ने आज हमको अर्पा नदी के विषय में कुछ बातें बताईं विस्तार के साथ। बिलासपुर शहर के बीच से गुजरने वाली अर्पा नदी, जिसके नाम पर ही आधारित है हमारा ये अर्पा रेडियो, जिस पर आज प्रसारित किया गया ये विशेष साक्षात्कार। आपके पास भी है अगर बिलासपुर या आसपास से संबंधित कोई विशेष जानकारी, तो आप हमारे साथ उसको साझा कर सकते हैं।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।